दर्शनों में दो प्रकार का मत पाया जाता है, कुछ जो हैं वो शब्द नित्यत्ववादी हैं और कुछ जो हैं वो शब्द अनित्यत्ववादी हैं। तो जो शब्द को नित्य मानते हैं उनके मत में शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है, शब्द की अभिव्यक्ति होती है, और जो शब्द के अनित्य मानने वाले लोग हैं उनके मत में शब्द की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती। व्याकरण दर्शन के अनुसार शब्द नित्य है, इसलिए शब्द की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो होती क्या है, शब्द की अभिव्यक्ति होती है। उसी अभिव्यक्ति को आप प्रादुर्भाव शब्द से भी कहते हो, प्राकट्य शब्द से भी कहते हो। तो यह जो अभि शब्द उत्पन्न नहीं होता बल्कि शब्द जो है अभिव्यक्त होता है, यह जो वाद है, यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जो मानने वाले हैं उनको अभिव्यक्तिवादी कहा जाता है। और अभिव्यक्तिवादियों में तीन प्रकार के जो है मत हैं कि ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति होती है, ये सिद्धांत है। तो शब्द ध्वनि से शब्द की जो अभिव्यक्ति होती है उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रोसेस है, उसमें वो प्रोसेस तीन प्रकार का माना गया है। कुछ लोग जो है मानते हैं कि ध्वनि के द्वारा विषय का संस्कार होता है, कुछ लोग मानते हैं कि ध्वनि के द्वारा इंद्रिय का संस्कार होता है, और कुछ लोग मानते हैं कि उभयस्य संस्कार, इंद्रिय का भी संस्कार करती है ध्वनि और विषय का भी संस्कार करती है ध्वनि। तो इस तरह से ये तीन मत हैं। विषय आप जानते हैं कि जिस वस्तु का इंद्रिय से ज्ञान होता है वह उस ज्ञान का विषय होता है, जैसे चक्षुर इंद्रिय से घट का ज्ञान होता है तो वहाँ पर विषय हो जाएगा घट। जिस यस्य ज्ञानम सह ज्ञानस्य विषयः, जिसका ज्ञान होता है वह ज्ञान का विषय कहलाता है। ये चीज आप पहले से जानते हैं। 80 संख्या की कारिका तक आपने जो पढ़ा तो उसमें पूर्व पाठ में ये आया था कि एक मत जो था कि विषय का ही संस्कार होता है, और उसका उदाहरण दिया था घ्राणेन्द्रिय और गंध का, कि जैसे नया जो घट बना रहता है उस पर पानी का छिड़काव करते हैं और उससे जो है ना एक खुशबू निकलती है, एक गंध निकलता है, और जिसको नासिका इंद्रिय से उसका ग्रहण किया जाता है। तो वहाँ नासिका इंद्रिय पर जल नहीं छिड़का जाता है, जल छिड़का जाता है विषय पर, घट पटादि पर, और उस विषय पर ही संस्कार करने से वो गंध की प्रतिपत्ति होती है। इसी तरह से अब इंद्रिय के का संस्कार होता है, इसका उदाहरण दिया गया था, ये सूरमा लगाने की बात हुई थी या त्रिफला जल से जो है आंख धोने की बात हुई थी, तो उससे जो है नेत्र की ज्योति बढ़ती है। तो ये दोनों उदाहरण आए थे। आज 81वीं कारिका से हम पढ़ेंगे, इसमें जो है ना उदाहरण दिया गया है कि दोनों का संस्कार होता है, ये जो मत है अभिव्यक्तिवादियों का उसके बारे में बताया गया है। चक्षुषः प्राप्य कारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि विषयेन्द्रिययोरिष्टः संस्कारः स क्रमो ध्वनेः। चक्षुषा, चक्षुष जानते हैं, चक्षु इंद्री माने नेत्र रूपी जो इंद्री है उसमें जो प्राप्य कारित्व होता है, प्राप्य कारित्व का एक शब्द में अगर अर्थ करना चाहें तो चाक्षुष प्रत्यक्ष कह लीजिए। चक्षुषः प्राप्य कारित्व का एक शब्द में अर्थ करना चाहें तो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा। ये चाक्षुष प्रत्यक्ष क्या हुआ कि चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जिसका प्रत्यक्ष हो माने ज्ञान हो, तो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जिसका ज्ञान हो उसको हम चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। तो चक्षुषः प्राप्य कारित्वे अर्थात चाक्षुष प्रत्यक्षे माने चाक्षुष प्रत्यक्ष में, चक्षु के द्वारा होने वाले ज्ञान में। तेजसा तु द्वयोरपि विषयेन्द्रिययोः इष्टः संस्कारः, तेजसा माने आलोके न प्रकाशे न, प्रकाश के द्वारा द्वयोः अपि दोनों का ही, किन दोनों का, तो विषयेन्द्रिययोः विषय और इंद्रिय दोनों का ही जो है संस्कार इष्टः, दोनों का ही संस्कार इष्ट होता है, और वही प्रकार वही तरीका वही प्रोसेस जो है सौ क्रमो ध्वनि है, ध्वनि में और शब्द की मतलब शब्द में इन दोनों के बीच में भी इसी तरह से यही संस्कार जो है इष्ट है। अब थोड़ा सा इसको समझ लिया जावे कि अंधेरे में कोई घड़ा रखा हुआ है तो वह घड़ा उस घट का प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन जब आलोक से उस घट का संबंध होता है तो फिर घट का प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी तरह से अगर एक पर्दा लटका दें चक्षुष के आगे, चक्षुरिंद्री के आगे अंधेरा कर दें, आवरण कर दें, तो फिर जो है ना अगर घड़ा किसी प्रकाश वाली जगह पर रखा भी है तो भी चक्षुरिंद्री से उसका ग्रहण नहीं होता। कब ग्रहण होता है? जब प्रकाश जो है चक्षुरिंद्री पर भी हो और प्रकाश जब विषय पर भी हो तभी जा करके चक्षुरिंद्री के द्वारा घटपटादि का प्रत्यक्ष किया जाता है। तो इस उदाहरण के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि आलोक जो है उससे इंद्रिय का भी संस्कार होता है और विषय का भी संस्कार होता है, और दोनों के संस्कार होने के बाद ही चक्षुषः प्राप्यकारित्व होता है, माने चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। इसी तरह से ध्वनि जो होती है वह ध्वनि शब्द का भी संस्कार करता है और श्रोत्र इंद्रिय जो है उसका भी संस्कार करता है। इस तरह से विषय जो हो गया शब्द और इंद्रिय जो हो गई श्रोत्रेंद्रिय, इन दोनों का जब संस्कार होता है तब जाकर के शब्द की अभिव्यक्ति होती है ध्वनि के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो अभिव्यक्तिवाद के जो तीन मत थे उन तीनों मतों का एक एक उदाहरण दे करके बाकी पदिकार भर्तृहरि ने हम लोगों को समझाया है। अब बयासीवीं कारिका है, स्फोट रूप अविभागे न ध्वनेर ग्रहण मिश्यते कैश्चित ध्वनि असंवेद्य स्वतंत्र अन्य प्रकाशक। यहाँ कैश्चित जो लिखा हुआ है ये जो है ना विद्वानों के लिए आया है, आचार्यों के लिए आया है कि कुछ आचार्यों के मत में कुछ विद्वानों के मत में दो तरह का मतभेद पाया जाता है। ये किस प्रसंग में है? तो प्रसंग ये है कि ध्वनि स्वतंत्र रूप से भाषित होता है अथवा ध्वनि जो है स्फोट से अभिन्न रूप में भाषित होता है, माने स्फोट सहित ध्वनि भाषित होता है अथवा स्फोट रहित ध्वनि भाषित होता है। ये दो मत हैं। इन्हीं दोनों मतों को बताने के लिए इस कारिका में कहा कि स्फोट रूप अविभागे न, स्फोट का जो रूप है माने स्वरूप है उससे अविभागे न माने अभेदे न बिना भेद के ध्वने हे ग्रहणम इष्यते कैश्चित आचार्य स्फोट स्वरूपस्य भेदम विनैव ध्वने हे ग्रहणम इष्यते। कुछ आचार्यों के मत में ध्वनि का जो ग्रहण होता है वह स्फोट से अभिन्न ध्वनि का ग्रहण होता है, माने स्फोट सहित ध्वनि का ग्रहण होता है। ये एक मत हो गया। और दूसरा मत जो है उस मत में क्या है कि स्फोट से भिन्न ध्वनि का ग्रहण होता है, वह जो ध्वनि है वह स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र है मतलब स्फोट के अधीन नहीं है, और असंवेद्य है वह ध्वनि जो है वह असंवेद्य भी है, असंवेद्य है मतलब स्वयं उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे एक उदाहरण पर देख लीजिए, हम आँख से जो है ना वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन आँख से हम आँख को देखते हैं क्या? आँख से हम आँख को नहीं देखते हैं, आँख से आँख को नहीं देखते हैं लेकिन आँख से दुनिया को देखते हैं। इसी तरह से ध्वनि जो है वह स्वयं नहीं दिखती है किंतु वह ध्वनि स्फोट का प्रकाशक हुआ करती है। इसी बात के लिए यहाँ पर कहा कि ध्वनि ही असंवेद्य स्वतंत्र अन्य प्रकाशक। ध्वनि जो है वह असंवेद्य है माने स्वयं बोध का स्वयं जो है वह ज्ञान का विषय नहीं होती है, स्वतंत्र है ध्वनि जो है वह स्वतंत्र है माने स्फोट के अधीन नहीं है, स्फोट से अलग है, और अन्य प्रकाश कहा, अन्य का अर्थ यहाँ पर स्फोट कर लीजिए, अन्य प्रकाश का माने स्फोटस्य प्रकाश कहा, और वह स्फोट का प्रकाशक होती है। अब यहाँ जो दो बातें बताएंगे इसमें मुख्य बात यही है कि ध्वनि जो है स्वतंत्र रूप में भाषित होती है और ध्वनि जो है पराधीन रूप में भाषित होती है, यही दो मत है। पराधीन भाषित होती है मतलब स्फोट सहित भाषित होती है और स्वतंत्र भाषित होती है, मतलब स्फोट रहित भाषित होती है। इस तरह से ये दो मत यहाँ पर बताए गए हैं। लेकिन व्याकरणों के मत में जो पहली लाइन वाला मत है वही मत है कि ध्वनि का जो ग्रहण होता है, ध्वनि का जो ज्ञान होता है वह स्फोट से अभिन्न ध्वनि का ज्ञान होता है, स्फोट से भिन्न ध्वनि का ज्ञान नहीं होता है। ये व्याकरणों का सिद्धांत पक्ष है। अब 83 संख्या वाली कारिका को हम पढ़ेंगे। यथानुवाक श्लोको वा सोढत्वम उपगच्छति आवृत्या न तो सग्रंथ प्रत्यावृत्या निरूप्यते। ये बार बार जो है वाक्य पदिकार कहते हैं कि स्फोट जो है वह अखंड है, स्फोट जो है वह एक है, और उस एक स्फोट का जो व्यंजक है वह अनेकों ध्वनियां हैं, और उस ध्वनि में भी दो तरह का मत है। एक एक मीमांसक लोग जो हैं वो वर्णात्मक ध्वनि मानते हैं, और न्यायिक लोग जो हैं वो वर्णात्मक ध्वनि नहीं मानते हैं, वह वर्ण रहित ध्वनि ही मानते हैं। तो इस स्थिति को माने स्फोट जो है वह एक ही है, कैसे, इसको उदाहरण के द्वारा यहाँ पर इस कारिका में बताया गया कि यथा अनुवाक श्लोको वा सोढत्वम उपगच्छति आवृत्या न तो सग्रंथ प्रत्यावृत्या निरूप्यते। यहाँ ये संदेह किया गया कि आप स्फोट को एक मानते हैं और उस स्फोट को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वनियों को जो है ना अनेक मानते हैं, तो जब अभिव्यंजक अनेक हैं तो अभिव्यंजक ध्वनि से जो अभिव्यंग्य स्फोट है वह भी अनेक होना चाहिए। इसका खंडन करने के लिए बताते हैं कि यथा अनुवाक श्लोक होगा। आप जानते हैं कि श्लोक में कितने पाद होते हैं, चार पाद होते हैं, चार चरण होते हैं, और चारों चरणों को मिला करके एक श्लोक कहा जाता है। ऐसे ही वेद में अनेक मंत्रों का जो समुदाय है उसको अनुवाक कहते हैं। इसको समझने की दृष्टि से आप अध्याय समझ लीजिए, जैसे वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद्भागवत है, उसमें अध्याय होते हैं, उसी तरह से वेद में अनुवाक होते हैं। तो वहाँ पर अनुवाक में भी अनेक मंत्रों को का जो समुदाय है उसको अनुवाक कहा जाता है। अब देखिए कि मंत्र तो अनेक हैं लेकिन उसका समुदाय जो अनुवाक है वह एक माना जाता है। इसी तरह से चरण तो चार हैं, पाद तो चार हैं, लेकिन उन चारों का जो समुदाय है उसको एक श्लोक माना जाता है। तो उसके अनुवाक का जो है बोधक कौन हुआ, नाना मंत्र। श्लोक का बोधक कौन हुआ, नाना चरण। फिर भी हम अनुवाक को एक कहते हैं, श्लोक को एक कहते हैं। इसी तरह से अनेक ध्वनि के द्वारा भी व्यंजित होने वाला जो स्फोट है वह एक माना जाता है। अब थोड़ा सा इस कारिका के शब्द को देख लें कि यथा अनुवाक श्लोको वा सोढत्वम उपगच्छति। सोढत्वम जो यहाँ पर है इसका अर्थ करना है एक बुद्धि विषयताम उपगच्छति, माने एक बुद्धि का विषय बनता है। एक बुद्धि का विषय बनना मतलब हो गया कि अयम एक श्लोक, अयम एक अनुवाक, यह जो ज्ञान है यही है एक बुद्धि विषयता वाला ज्ञान। तो सोढत्वम माने एक बुद्धि विषयत्वम अथवा एक बुद्धि विषयता। तो जैसे अनुवाक और श्लोक एक बुद्धि का विषय बन जाता है, उसी तरह से स्फोट भी जो है एक बुद्धि का विषय बनता है। अब दूसरी पंक्ति को देखिए, आवृत्या न तो सग्रंथ प्रत्यावृत्या निरूप्यते। सग्रंथ, सहग्रंथ मतलब अनुवाक नामक ग्रंथ अथवा श्लोक नामक ग्रंथ, वह जो अनुवाक है अथवा श्लोक है इसकी अगर हम आवृत्ति करें अथवा प्रत्यावृत्ति करें। ये आवृत्ति और प्रत्यावृत्ति मतलब क्या हुआ, आवृत्ति का मतलब हुआ सकृत आवृत्ति, सकृत आवृत्ति मतलब एक बार आवृत्ति, और प्रत्यावृत्ति का मतलब हुआ बारंबार आवृत्ति। तो सकृत आवृत्ति करें तो भी और बारंबार आवृत्ति करें तो भी वह जो अनुवाक है और वह जो श्लोक है वह अनेक जैसे नहीं बन जाता है। अब त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह जो श्लोक है इसको हम हजार बार पढ़ लेंगे तो भी यह श्लोक तो एक ही रहेगा ना, अनेक नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि आवृत्ति हो या प्रत्यावृत्ति हो उससे 900 ग्रंथ निरूप्यते, उस ग्रंथ का उसके आवृत्ति प्रत्यावृत्ति के आधार पर निरूपण नहीं होता है, अर्थात उसको अनेक नहीं कहा जाता है। ऐसे ही मतलब उसके ध्वनि ध्वनियाँ जो हैं वह उनकी आवृत्ति हो प्रत्यावृत्ति हो तो भी स्फोट जो है वह एक ही कहलाएगा, अनेक नहीं कहलाएगा। अब 84वीं कारिका को हम पढ़ेंगे, लेकिन हम अगले पाठ में इसको पढ़ेंगे, आज का पाठ हम यहीं रखते हैं।